नमस्ते साथियों, आइए सुनते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ की कड़ी संख्या 28।
पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित।
प्रीता ने घर पर रत्ना भाभी की खबर दी। सब दुखी थे। इसी बीच घर में सीमा के देवर और देवरानी, सुनील जी और ज्योति बाबूजी से मिलने आए।
शब्द जुटाने की कोशिश कर रहे हैं बाबूजी, पर जुटा नहीं पा रहे। पता नहीं कैसे क्षमा मांगे आप लोगों से।
कोई बात नहीं सुनील जी, कम से कम आप आए तो। सीमा के जाने के बाद आपके घर से किसी ने यहाँ कदम तक नहीं रखा। कहिए।
मुझे याद है, इसी आंगन में हम पहली बार सीमा भाभी को देखने आए थे।
अरे इसी आंगन से तो हमने अपनी गुड़िया को विदा किया था एक दिन, ये सोच कर कि आप लोग उसे यहाँ से भी ज्यादा प्यार देंगे, पर आप लोगों ने तो हमारी सीमा को राख कर दिया।
हम जितना भी पश्चाताप कर लें, वो कम है और कम ही रहेगा बुआ जी।
पश्चाताप से मेरी सीमा वापस तो नहीं आ जाएगी सुनील बाबू?
ये दुर्गा माँ की मूर्ति है।
ओह।
सीमा दीदी ने मुझे दी थी। उनके लिए ये मूर्ति नहीं, शक्ति का प्रतीक था। सीमा दीदी ने हर पल मेरे बुझते हौसले को बढ़ाया था बाबू जी। आज वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा शक्ति बनकर जिंदा रहेगी।
हमारी तो शक्ति ही खो गई बेटा, जो कुछ हुआ वो विश्वास ही नहीं होता उस पर। आखिर गलती क्या थी हमारी बेटी की कि उसे ऐसी सजा मिली?
जो सजा के हकदार हैं वो आज जेल में हैं बाबूजी। मैं उनका बेटा हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन्हें जेल से निकालने की कोशिश करूँ, पर मेरे अंदर का इंसान मुझे रोकता है।
हम गिले शिकवे का बोझ रखकर जीना नहीं चाहते बेटा, पर जो कुछ हमारे साथ गुजरा है उससे उबरना आसान नहीं है बेटा।
बाबूजी, हम एक बार स्नेहा जी से मिलना चाहते हैं, हाथ जोड़कर उनसे भी क्षमा मांगना चाहते हैं।
दीदी अस्पताल में है,
सब ठीक तो है ना प्रीता?
कुछ भी ठीक नहीं है ज्योति बेटा। इस घर को देख रही हो, इसकी दीवारें तो तुम्हें खड़ी नजर आ रही हैं बेटा, मगर इनकी नींव हिल चुकी है।
क्या हुआ प्रीता?
रत्ना भाभी का बच्चा बच नहीं पाया, उनकी हालत ठीक नहीं है, स्नेहा दीदी उन्हीं के साथ है।
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सब ठीक हो जाए, अगर हो सके तो क्षमा कर दीजिए हमें।
बेटा, तुम हमारे द्वार पर क्षमा मांगने आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है बेटा।
ये आपका बड़प्पन है बाबूजी, पर एक बार के लिए ये नफरत भरी दीवार गिराना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं।
अच्छा बेटा।
ये मेरा आज था, इस आज में 100 उलझने थी, लेकिन इसी अस्पताल में कोई और भी था जिससे अतीत की कुछ तारें जुड़ी हुई थी। चाहे अनचाहे भी वो तारें कभी कभी उलझ कर सामने आ जाती हैं।
डॉक्टर स्नेहा, कैसी हैं आपकी भाभी?
बेहतर है डॉक्टर सुमित, कम से कम पूछने के लिए शुक्रिया।
सब आपके काम से इतना खुश हैं। डॉक्टर जैन आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ऐसा लगता है कि आपके बिना पता नहीं ये अस्पताल कैसे चल रहा था या आगे कैसे चलेगा।
आपकी नाराजगी किस बात की है आज तक नहीं समझ पाई मैं।
तुम समझ कर भी नासमझ बनती रही हो स्नेहा, ये तुम्हारी पुरानी आदत है।
बेहतर है कि हम पुरानी कॉलेज की बातों को ना ही छेड़ें।
तुम्हारे लिए वो पुरानी बातें हैं क्योंकि तुमने एक करियर डिसीजन लिया और मुंबई चली गई, पीछे मुड़ के कभी देखा भी नहीं।
हाँ गई मुंबई, उस समय भी मैं अपने फैसले पर बनी रही और आज भी।
तुमने शुरू से सिर्फ अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अपने बारे में।
मेरे सामने मेरा भविष्य, मेरे परिवार का भविष्य था, मैंने जो किया वो सही था। आपने उस समय भी इसे गलत समझा और आज भी आप वहीं अटके हुए हैं।
हाँ, अटका हुआ हूँ क्योंकि तुम मुझे भूल चुकी हो, पर मैं तुम्हें शायद भूल नहीं पाया। हर कोई तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं होता।
खुदगर्ज? हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे आगे मेरा भविष्य था, मेरे पास शायद किसी और चीज के लिए वक्त नहीं था। अब इसे आप मेरी खुदगर्जी समझे या कुछ भी।
वैसे प्रतापपुर के इस अस्पताल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या जताने के लिए आई हो?
मुंबई हो या प्रतापपुर, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है।
तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज नहीं, तुम्हारे हालात थे, एक छोटे से शहर के एक चैरिटी हॉस्पिटल में काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। ये दिन दो दिन का खेल नहीं है। इस काम के लिए जिंदगी भर लगे रहने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो शायद तुम्हारे पास है ही नहीं।
आपने पहले भी मुझे नहीं समझा था और आज भी आपने साबित कर दिया कि आप मुझे नहीं समझते।
अरे साइड हटिए भैया, साइड दीजिए, साइड साइड हटिए भैया, हटिए हटिए, सामने से हटिए भैया।
क्या हुआ मुन्ना?
अरे डॉक्टर सुमित, इमरजेंसी केस है। सरला देवी इस बच्ची को गंभीर हालत में लेकर आई है।
माँ,
देखो सुमन बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम है ना, देखो हम तुम्हें ले आए हैं ना हॉस्पिटल में, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा,
क्या हुआ सरला देवी?
अरे इस बच्ची को कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब, तो हम उस कमलेश चौधरी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ
क्या हुआ इस बच्ची को?
अरे क्या बताएं डॉक्टर साहब, उसका मरद जो है ना वो आदमी नहीं राक्षस है, राक्षस। बेचारी गर्भ से थी और जबरन उसके साथ, अरे छोटी सी कली जैसा नाजुक बच्ची को मसल दिया। पति है कि जल्लाद?
ये तो बच्ची है, इसकी शादी हो गई।
हाँ अरे उसका मरद कमलेश चौधरी, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस इस बच्ची को आप बचा लीजिए डॉक्टर साहब।
ठीक है, इसे फौरन अंदर लेकर जाओ।
इतनी छोटी सी लड़की की शादी हो चुकी थी और उसके पति ने उसके साथ, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, क्यों हमारे समाज में इतनी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है? क्या उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं? बहुत गुस्सा था मेरे मन में, मेरे सामने एक फूल जैसी बच्ची को लाया गया जिसे बुरी तरह से मसल दिया गया था। एक लड़की के साथ इतना अत्याचार। डॉक्टर पूनम छुट्टी पे थी इसलिए डॉक्टर सुमित ने मुझसे मदद मांगी। मुझे किसी भी तरह इस बच्ची को बचाना था जिसका नाम सुमन था। उसे देखते ही पता नहीं क्यों सीमा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। किसी भी हालत में मैं उसकी जिंदगी को बचाना चाहती थी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे।
दोस्तों, डॉक्टर स्नेहा के सामने चुनौती है इस बच्चे की जान बचाने की। क्यों आज भी हमारे समाज में लोग बाल विवाह से होने वाले बुरे प्रभावों को नहीं समझ पाते हैं? आखिर ऐसे कौन से प्रयास किए जाने चाहिए कि बाल विवाह के खिलाफ हम सब एकजुट होकर खड़े हो जाएं और इसे दूर करें? अगर आपके पास कोई उपाय हैं तो उन्हें रिकॉर्ड जरूर करें, ये किसी की मदद कर सकते हैं। फोन में 3 दबाकर रिकॉर्ड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, नमस्ते।
मैं कुछ भी कर सकती।